जय राधा माधव, जगिहारी राधा माधव Yeah. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Mm-hmm. कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध अध्याय 15 श्लोक संख्या 31 पढ़ेंगे। यतो यतो सौ प्रहरत परस्वधो मनो निलौजा पर चक्रसूदन तत तत छिन्न भुजोरुकंधरा निपेतुर्व्याहत सुतवाहना यतो यतो सौ प्रहरत परस्वधो मनो निलौजा परचक्रसूदन ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकंधरा निपेतुरुर्व्याहत सुतवाहना यतो यतो सौ प्रहरत परस्वधो मनो निलौजा परचक्रसूदन ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकंधरा निपेतुरुर्व्याहत सुतवाहना।
Oh.
शब्दार्थ यत जहां यत जहां असौ भगवान परशुराम प्रहरत प्रहारत करते हुए परस्वधः परशु नामक हथियार चलाने में निपुण मन मन की तरह अनिल वायु की तरह ओजा शक्तिशाली पर चक्र शत्रु की सैन्य शक्ति का सूदन बध करने वाला ततः वहां ततः वहां छिन्न कटकर तितर बितर भुज बाहें पुरु पांव कंधरा धड़ निपेत गिर पड़े पूर्व्याम पृथ्वी पर हत मारे हुए सूत सारथी बाहना घोड़े तथा हाथी की सवारियां। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फर्श से शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। वे जहां जहां गए सारे शत्रु खेत रहे। उनके पांव हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। तात्पर्य प्रारंभ में जब शत्रु सेना युद्ध करने वाले सैनिकों हाथियों तथा घोड़ों से भरी थी तो भगवान परशुराम मन के वेग से उनके बीच उनका वध करने के लिए आगे बढ़े। जब वे कुछ थक गए तो उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई, वायु जैसी हो गई, और फिर तेजी से शत्रुओं का वध करते रहे। मन का वेग वायु के वेग से अधिक है। ओम ज्ञान स्मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यतो यतो सौ प्रहरत परस्वधो मनो निलौजः परचक्रसूदन ततस्ततश्छिन्न भुजो रूपन्धरा निपेतुरुद्याम हतसुतवान। शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। वे जहाँ जहाँ गए सारे शत्रु खेत रहे, उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए, उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। सुखित वैष्णवों के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए आज हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम का ये जो नवम स्कंद का जो 15वां अध्याय 21वां श्लोक है, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है। भगवान परशुराम जो कि सत्यावेशावतार हैं, सत्यावेशावतार का मतलब है कि भगवान जो हैं वो किसी स्पेशल जीव को चुनते हैं और उसको जो है अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी समस्त शक्तियाँ उनको देते हैं और वो जो जीवात्मा है वो उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि भगवान स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। और भी कई सत्यावेशावतार हैं, जैसे वेद व्यास जिन्होंने वेदों की रचना की वो भी सत्यावेशावतार, और भगवान बुद्ध वो भी सत्यावेशावतार हैं। और तो इस तरह से भगवान परशुराम जो हैं वो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चर्चा जो चल रही है कि कैसे परशुराम जी जो है वो यहाँ पे पीछे भाग रहे हैं, भाग के आए और राजा जो थे कार्तवीर्य अर्जुन उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो है अपने जो बल और ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और राजा ने जितने सैनिक भेजे, हाथी घोड़े सैनिक जितने, सबको मार रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मन की गति से मार रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं मन की गति से भगवान परशुराम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। मतलब कि मन की गति का मतलब है कि सोचते अभी इसको मारना है तब तक मर जाता है वो, इसको बोलते मन की गति। नेक्स्ट इधर देखे, इधर नजर गया तो सोचा अभी मारता हूँ इसको, तब तक मर गया वो। यही होगा मन की गति, मतलब जिधर आंख देख रहे हैं जिसको मारने की इच्छा करते ही वो मर गया, कहने को इसको मन की गति बोलते हैं। मतलब सोचने में और मरने में कोई अंतर नहीं है।
इतना फास्ट बद कर रहे हैं और फिर थोड़े टायर्ड हो गए, थक गए मेंटली टच, तो फिर थोड़ा स्लो हो गया ट्रांसेंडेंटल टायर्डनेस। हमारे जैसा नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि थोड़ा गति स्लो कर दिया तो वायु की गति से, है ना, वायु की गति से फिर मारने लगे, है ना। तो वायु की गति भी कम थोड़े होती है, ना। तो इस तरह से भगवान परशुराम ने सारे सैनिकों को मारा और अपने बल ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। भगवान के 6 प्रकार का ऐश्वर्य होते हैं और पराशर ऋषि बताते हैं कि जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूरी तरह से पाए जाते हैं, कंप्लीट, है ना, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अमाउंट में, असीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, वही जो है वो भगवान कहलाने के योग्य है। तो यहाँ पे बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन परशुराम जी। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः और ज्ञान वैराग्य नहीं आस्तिक तो सौंदर्य भी है, एक भगवान का सौंदर्य और ज्ञान और वैराग्य और फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा फेमस है, अनलिमिटेडली फेमस है, और बल शक्ति, तो इस तरह से 6 हो गया। और क्या है? वैराग्य, वैराग्य हमने चर्चा किया था। तो भगवान के अंदर ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य पाए जाते हैं अनंत मात्रा में, इसलिए उनको बोलते हैं भगवान। ये कौन बताते हैं? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि मतलब वेद व्यास के पिताजी। तो प्रभुपाद भगवद गीता के 2 अध्याय का जो श्लोक है जिसमें श्री भगवान उवाच है, उसमें भी वर्णन करते हैं भगवान के 6 प्रकार के जो गुण हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य का, और पराशर मुनि को कोट करते हैं और प्रभुपाद बताते हैं कि जिसमें ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य अनंत मात्रा में प्राप्त होते हैं वही भगवान माने जाएंगे। तो भगवान परशुराम जी वहां पे सबको सफाया कर दिया और अपने वीर्य का प्रदर्शन किया, है ना, वीरता का प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है फिर राजा को भी मारे, कार्तवीर अर्जुन उनको भी शस्त्र बाहुत जिसको बोलते हैं उनको भी मारा, बहुत बलशाली थे, साधारण नहीं, नाम सुनने से लगता है ठीक है कार्तवीर अर्जुन को ही तो मारा है क्या है कभी कभी कई बार क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान के पराक्रम को समझना भी के लिए भी आसान नहीं है, कि अगर हम जानना चाहते हैं कि भगवान कितने महान है तो किसको मारा देखना पड़ेगा किसको मारा, छोटे मोटे व्यक्ति को मार देंगे तो महान नहीं मारे जाएंगे। तो भगवान की महानता को समझना है तो कार्तवीर अर्जुन की महानता को भी समझना जरूरी है। इसलिए भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना था हिरण्य कश्यप पूर्वक, जैसे भगवान नरसिंह देव अमर हो गए तरह से हिरण्य कश्यप भी अमर हो गया। जब भी नरसिंह आरती होती है तो हिरण्यकश्यप का नाम आता है, ठीक नहीं? भगवान नरसिंह देव की आरती क्यों? क्योंकि असाधारण जीवात्माएं हैं जिनका भगवान वध करते हैं और अपने वीरता का जो है प्रदर्शन करते हैं। तो कार्तिकेय अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे, जैसे आजकल बॉम्बे में जिस जो शक्तिशाली सबसे पावरफुल व्यक्ति जो मिस्टर यूनिवर्स अगर देखें तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। और उनके बल का प्रदर्शन अलग अलग युगों में लोगों की क्षमता अलग अलग होती है, हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसलिए जब इमेजिन नहीं कर सकते हम सोचते हैं ये सब अंधविश्वास है। जैसे कोई अगर रामायण देखता है सीरियल, रामायण सीरियल आया था टीवी पे तो पूरे देश में फेमस हो गया था, है कि नहीं? सबसे ज्यादा नंबर वन रेटिंग पे चल रहा था, है ना? सबने रामायण देखा, लेकिन उसके बाद कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ रामायण देखने से? किसी का हृदय परिवर्तन नहीं, लाइफ वैसे का वैसे ही चलता रहा। क्यों? क्योंकि रामायण देखने के बाद लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि रामायण जो अंधविश्वास है। रामायण देखने से पहले थोड़ा बहुत विश्वास था भी, लेकिन रामायण देखने के बाद तो लग गया कि ये तो पूरा बनावटी कहानी है, कोई डाउट नहीं है। क्यों? ये लोग देखते थे एक तीर इधर से आ रहा है, एक तीर इधर से आ रहा है और बिल्कुल आमने सामने है। इतना तो ओलंपिक में भी कोई सटीक नहीं चलेगा, लेकिन जिसको गोल्ड मेडल मिलता है वो भी इतना सटीक तीर नहीं चलाएगा, एकदम आमने सामने आके मिले और थोड़ी देर तक खड़ा रहेगा। और खड़ा ही नहीं रहेगा, उससे कुछ लाइट निकलेगा, कभी पानी निकलता है, कभी बड़ा मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि सभ्य ज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत, ये विज्ञान है, ये इसको समझना आसान नहीं है। इसलिए हम सब को गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलम नष्ट दिशा में शाम पुराण आर्को धुनोदित। भगवान जब अपने धाम चले गए, धर्म और ज्ञान और बाकी सारे आध्यात्मिक जो क्रियाओं को लेके चले गए साथ, तो फिर जाने से पहले भगवान ने कृपा किया, कलौ दो नष्ट दृशाम, नष्ट दृशाम मतलब दृष्टि नष्ट हो गया है कभी, अंधे हो गए हैं हम, अंधे हैं कलयुग में, हमारी आंख जो है वो अंधी हो गई है। क्यों? क्योंकि हम सत्य नहीं देख सकते, इसलिए नष्ट दृशाम, देखने की क्षमता में ह्रास हो गया है हमारा कलयुग में। दूरबीन में बैठकर देखते हैं तो सोचते हैं हम सब देख रहे हैं, लेकिन दूरबीन से हम सब कुछ नहीं देख सकते। दूर का देख सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते। दूरबीन उस इसीलिए इसको बोलते दूरबीन, सर्वबीन नहीं बोलते हैं। सर्वबीन मतलब जो सब कुछ देख सकता है, और दूरबीन मतलब जो दूर का देख सकता है। तो चींटी जो है एक दूरबीन बनाए, मान लीजिए एक चींटी और एक दूरबीन बनाती है चींटी, कई सारे चींटियों का जो चींटियों का जो समाज है उसमें जो कुछ चींटी बहुत बुद्धिमान चींटी, जो साइंटिस्ट चींटी, वैज्ञानिक की जो है बहुत सारे मिल के एक दूरबीन बनाया, और उस दूरबीन का जो साइज था वो चींटी के साइज का 1000 गुना। इतना बड़ा दूरबीन से तो हम देख ही लेंगे पूरे बॉम्बे को, चींटियों ने सोचा कि पूरे बॉम्बे को देख लेंगे हम, अगर हम एक ऐसा दूरबीन बनाए जो हमारी साइज का 1000 गुना हो तो उससे तो बॉम्बे को देख ही लेंगे, समझ जाएंगे पूरा। तो चींटी का साइज कितना होता है? वन मिलीमीटर, तो वन मिलीमीटर का 1000 गुना 1 मीटर, तो 1 मीटर बड़ा टेलीस्कोप बना दिया सिटियों ने मिलकर। बहुत आसान नहीं है, 1 मीटर का टेलीस्कोप सिटी अगर बना ले तो 1 मीटर छोटा होता है और उससे पूरा ब्रह्मांड को देख, सॉरी पूरे बॉम्बे को देखने का प्रयास, सिटी बॉम्बे को देखने का प्रयास कर रही है। तो 1 मीटर के अगर आप टेलीस्कोप से बॉम्बे को देखना चाहते देख पाएंगे? कोई नहीं देख सकते, पूरा बढ़िया से नहीं देख पाएंगे आप। तो कितना भी अगर सिटी प्रयास कर ले तो वो समझ सकती है बॉम्बे को? नहीं समझ सकती। तो चींटी अंधी है एक तरह से देखा जाए। मान लीजिए यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई चींटी चल रही है, तो क्या उसको पता है कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं? चींटी जानती है? यस या नो? नहीं, चींटी को नहीं, नहीं तो पता रहता तो भागती यहाँ से। क्यों? कि प्रभु जी थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो 4-5 चींटियां मर जाएगी, है कि नहीं? इनको पता भी नहीं चला और चींटियों के समाज में सुनामी आ गया, है कि नहीं? चींटियों ने कमिटी बैठाया, एक 50 चींटियां कैसे मरी, तो कमिटी की रिपोर्ट आई कि बाय चांस किसी चींटी ने तो नहीं मारा, हमने पता लगा लिया है किसी चींटी ने तो नहीं मारा है, पता नहीं कुछ हुआ, ऐसा हलचल हुआ और मर गई। तो कितना भी अगर चींटी प्रयास करे तो ये नहीं समझ सकते कि कमरे में इतने लोग बैठकर, कितना भी वैज्ञानिक विकास कर ले चींटी नहीं समझती है कि इस कमरे में इतने लोग बैठे हुए हैं। उसी तरह से अगर हम मनुष्य को ध्यान पूर्वक देखें तो हम इस ब्रह्मांड में चींटी से भी छोटे हैं, राइट और रॉन्ग? चींटी से छोटे हैं ना। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड को समुद्र, मैं वैज्ञानिकों के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, शास्त्र का तो लैंग्वेज अलग है, वैज्ञानिक के तरीके से भी अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए तो बताते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड को अगर हम समुद्र माने, अगर पूरे ब्रह्मांड को हम समुद्र माने, समुद्र से तुलना करें, तो उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जानते हैं, जो सौरमंडल जिसको बोलते हैं, सौरमंडल है, सन, सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट कंपनी, ये सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो जो सौर मंडल है वो बताते हैं कि एक बालू के कण के समान है उस समुद्र में। सौर मंडल किसके समान है? बालू की कण के समान। सोचिए कितना छोटा है ये हमारा सौर मंडल, और फिर उसके अंदर हम हैं, उसके अंदर कौन है? हम हैं, आई एम दिस एंड दैट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बालू के कण के अंदर कहीं घुसे हुए हैं, अंदर अटके हुए हैं, कहाँ पे हैं पता नहीं। तो हमारा साइज क्या है? तो बालू के कण के अंदर एक वैज्ञानिक बैठा हुआ है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, हिलता डुलता नहीं है क्योंकि हाथ नहीं चला सकता, सिर नहीं घुमा सकता, पूरी तरह से जो वो लकवा मार दिया उसने, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, ऐसा वैज्ञानिक बनने का क्या फायदा कि सिर नहीं हिला सकते? ये कौन सा वैज्ञानिक है? उसको इतना भी नहीं पता है कि मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता, कैसे हिलाऊं हाथ, ये भी इसका विज्ञान नहीं है। इतना असहाय व्यक्ति कह रहे हम उसको वैज्ञानिक बोल सकते हैं? तो आज विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है उसकी यही स्थिति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो विश्व के जो वैज्ञानिक है उनकी स्थिति क्या है, बहुत छोटे हैं। अगर सिटी से भी तो सिटी तो बालू कण के बराबर हो गए ना, सोलर सिस्टम। तो सोचिए उस बालू के कण के अंदर एक वैज्ञानिक बैठा हुआ है अपना टेलीस्कोप लेकर, और वो सोच रहा है, पूरा दिमाग दौड़ा रहा है पूरा। सोचिए बोल रहा है कि पूरे समुद्र को मैंने देख लिया है, बालू के कण के अंदर एक वैज्ञानिक है और बोल रहा है कि पूरे समुद्र को मैंने देख लिया, उसमें कहीं पे कोई भगवान। आप इसको मान सकते हैं? कंप्लीट नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। तो इसलिए कलौ नष्ट दृष्टाम ऐसा, हम सब भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए इसका मतलब हमें 100% विश्वास हो गया है, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जीबीसी का मीटिंग बैठाए थे, मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है, और सारे जीबीसी की मीटिंग बैठा कर प्रभुपाद ने जो है वो बहुत थोड़े प्रभुपाद उस दिन गुस्से में आ गए थे। प्रभुपाद ने सबसे पूछा, आर यू कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? आर यू कन्विंस्ड? उस समय सारे हमारे ही जैसे थे, यंग लोग थे, 1975-76 की बात थी, हम जैसे ही सारे वर्तमान आचार्य सबका सिर ऐसे झुका लिया विनम्रता में। प्रभुपाद बोले आई एम कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड। इतना आसान नहीं है, सुनने में, जानने में, समझने में और उसको रियलाइज करने में अंतर है। उसको बोलना भी आसान है लेकिन उसको महसूस करना इतना आसान नहीं है। इस तत्व को समझना कि भगवान है इतना आसान नहीं है। इसलिए इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए और इसको बुद्धि लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए है? क्योंकि कलयुग में जो है वो फेथ जो है विश्वास बहुत कम है। कलौ नष्ट दृशाम, कलयुग में नष्ट हो जाता है दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? बहुत बढ़िया दृष्टि है, दृष्टि नहीं है तो चश्मा भी है, दो दो चार चार आंख हो गया। अभी आप कैसे बोल रहे हैं दृष्टि नष्ट हो गया, दृष्टि बढ़ गया है? नहीं, दृष्टि नष्ट हो गया है। कौन सी दृष्टि नष्ट हो गई? शास्त्र की दृष्टि नष्ट हो चुकी है। हम ये जो चर्म चक्षु है इससे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो चमड़े की आंख है, और चमड़े की आंख से केवल चमड़ा दिखाई देगा, भगवान नहीं। हम इस चमड़े की आंख से भगवान को देखना चाहते हैं, स्वर्ग को देखना चाहते हैं, बाकी दूसरे लोगों को देखना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सत्य को नहीं देख सकते इन आंखों से, ये आंखें जो हमें धोखा देती हैं। इसीलिए कलौ नष्ट दृशाम ऐसा, कलयुग में जो है लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी, वो जो है विश्वास की आंख उनके पास नहीं होगी। शास्त्र में विश्वास, गुरु में विश्वास, ये नष्ट हो जाएगा। ये श्रद्धा जो है इतना आसान नहीं है। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ये है विश्वास का परिभाषा। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है कि इस बात को मान लेना कि कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, बाकी सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे, केवल हम कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल भगवान का नाम लेने से अपने आप बाकी सारे कर्म हो जाएंगे। ये विश्वास पर आसान नहीं है, इतना विश्वास निश्चित करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये विश्वास हो जाए तो जब हम माला लेकर जप करने बैठते हैं ना, उस समय कोई और चीज दिमाग में नहीं आएगा। क्यों? जो भी चिंता आएगी दिमाग में तुरंत, अगर विश्वास है कि सारी चिंताएं नष्ट हो जाएगी अगर हम नाम जप करेंगे तो, लेकिन ये विश्वास होता नहीं है क्योंकि इतना आसान नहीं है। कलौ नष्ट दृशाम ऐसा, इसलिए कलयुग में लोगों की आंख दृष्टि नष्ट हो गई है। तो इस दृष्टि को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसलिए उसके लिए एक अब अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो अंधकार है, तो अंधकार में आपको कितना दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा? बहुत कम। तो अंधकार में आप रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं तो कितना पता चलेगा? बहुत कम जान पाएंगे। तो इसी तरह से जब हमारी आंखें नष्ट हो चुकी हैं तो फिर हमें दृष्टि प्रदान करने के लिए पुराण अर्क अधुनोदित, ये जो अर्क है, अर्क मतलब सूर्य, पुराणों में सूर्य के समान है ये पुराण, भागवत पुराण रूपी जो सूर्य है वो उदित हुआ है, अभी अभी उदित हुआ है, प्रकट हुआ है। किस लिए सूर्य प्रकट होता है? किस लिए? अंधेरा नष्ट हो जाता है, जो कलयुग का जो अविश्वास का वातावरण है ये नष्ट हो जाएगा अगर हम इस ब्रह्मांड को, इस संसार को इस श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखें और उसको स्वीकार करें अपने जीवन में। तो इन आंखों से हम नहीं सत्य को देखने का प्रयास न करें, हमें शास्त्र की आंखों से देखने का प्रयास करना चाहिए, गुरु की आंखों से देखने का प्रयास करना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे सत्य क्या है। तब हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में बता रहा था कि कैसे दो तीर आके लड़ते थे, ये बिल्कुल सटीक कैसे हो सकता है ऐसा? इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है, ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नहीं कर सकते इसलिए कोई नहीं कर सकता। और एक बंदर आया और हाथ में पहाड़ लेकर उड़ रहा है समुद्र के ऊपर से, ये हो सकता है क्या? हो सकता है? बताइए, बंदर हाथ में पहाड़ लेकर समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है, वैज्ञानिक मानेंगे इसको? कभी कभी नहीं मानेंगे, ये तो गुरुत्वाकर्षण के बल के अगेंस्ट हो गया, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत के खिलाफ हो गया ये। लेकिन ये पॉसिबल है, संभव है ये, क्योंकि इसलिए हमें प्रभुपाद की किताब पढ़नी है। श्री प्रभुपाद इसको बताते हैं कैसे ये संभव है। श्रील प्रभुपाद की किताबों में बड़े ही डिटेल में बताया गया है कि कैसे ये संभव है। तो जैसे कि कलयुग में, जैसे हम और भी कई बातें सुनते हैं, और भी जैसे तो सुनते हैं कि सौवरी मुनि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। अरे ये तो बिल्कुल पागलपन है, 70 साल 80 साल की उम्र होती है तो 60,000 वर्ष तक तपस्या कैसे कर लिया? तो ये सारे ज्ञान जो है कैसे ये संभव है इसको बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है, शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कलयुग में हम अविश्वास का वातावरण इतना ज्यादा है कि अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद की किताब रेगुलर एवरीडे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, विदाउट फेल हर भक्त को पढ़ने का प्रयास करना है, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे कैसे यह संभव है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो और जब विश्वास आएगा, कई बोल लोग नाम से नहीं हो जाएगा, काम नहीं चल जाएगा, केवल नाम जब से नहीं हो जाएगा, सारा किताब पढ़ने क्या जरूरत है, ये सब विश्वास लेक्चर से नहीं, क्या जरूरत है, नहीं नहीं चलेगा काम। क्यों? क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु नाम हट के बाजार में नाम बेच रहे थे तो नाम खरीदने वाले की एक योग्यता थी, वो क्या योग्यता थी, श्रद्धावान जन, जिसके अंदर श्रद्धा है वही इस नाम को खरीद सकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो केवल नाम जप करने से, बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन, क्योंकि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, आदौ श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है, और श्रद्धा नहीं है तो भक्ति शुरू होगी ही नहीं। इसलिए श्रद्धा कैसे आएगी, श्रद्धा आएगी जब हम गुरु साधु और शास्त्र से श्रवण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आध्यात्मिक विज्ञान को। इसलिए तद्विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जिन्होंने इस तत्व को दर्शन किया है तत्वदर्शी वही इसको बता सकते हैं, आसान नहीं है इसको समझना। जिन्होंने गुरु की भगवान की सेवा तपस्या करके और सिद्ध किया है इस ज्ञान को वही बता सकते हैं, सबके लिए बस में नहीं है। इसलिए इसको बहुत ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, केवल भावुकता नहीं है कि मेरा भाई की तरह दो हाथों में ऐसे लेके टिन 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 और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जब श्री प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, अभी मैं खारगर में था तो पढ़ रहा था लीलामृत, उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद उसमें लिखा था कि प्रभुपाद वहां पे देते, एक माता जी थी, तो माता जी ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद स्वामी जी व्हेन आई चैंट द होली नेम, मैं जब हरिनाम जप करती हूँ और बहुत कॉन्सेंट्रेट करती हूँ उससे, है ना, दोनों भावों के बीच में कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो मुझे लाल पीला लाइट दिखाई देता है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत एडवांस हो गई मैं, तो बात बोले जब कर तो चला जाएगा। तो इस तरह से गुरु जो है क्या करता है, काट देता है सारे अज्ञान को, काट देता है एक क्षण में काट देता है। क्यों? क्योंकि वो तत्वदर्शी है। भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, कहानी की तरह नहीं, सीरियल तरह नहीं, टीवी सीरियल तरह, जन्म कर्म मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति टीवी सीरियल तरह, नहीं तत्वतः, तत्वतः टीवी सीरियल देख के है हम तत्व को नहीं समझ सकते, तत्व को कैसे पता चलेगा, कहानी पता चल जाएगी, स्टोरी लाइन पता चल जाएगा, लेकिन तत्व नहीं पता चलेगा, तत्व का दर्शन कौन कराएगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जिसने तत्व को रियलाइज किया, तत्वदर्शी, तत्वदर्शी गुरु वो बताएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद वो तत्वदर्शी गुरु हैं जिन्होंने भगवान परशुराम की तरह ही पूरी पृथ्वी पे बारह बार भ्रमण किया, और नास्तिक शून्यवादी और निर्विशेषवादियों का संहार किया 10 साल के अंदर। भगवान परशुराम की शक्ति प्रभुपाद के अंदर। और मैं पढ़ रहा था अगले अध्याय में आएगा कि भगवान परशुराम जो हैं अभी जो अभी भी मौजूद हैं महेंद्र पर्वत पे, आज भी भगवान परशुराम तपस्या कर रहे हैं, विराजमान है। और अगला जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर में भगवान परशुराम जो हैं वो प्रीचर बनेंगे और वैदिक संस्कृति वैदिक ज्ञान जो है उसका प्रचार करेंगे, जैसे प्रभुपाद ने किया इस युग में, ये लिखा हुआ है। श्री प्रभुपाद भी हैं भगवान परशुराम की तरह हाथ में फरसा लेके ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार लेके सिर काट के काट दिया, अभी भी काट रहे हैं, अभी भी काट रहे हैं प्रभुपाद। ये नहीं कि पहले काटे अब प्रभुपाद चले गए तो अब नहीं काट रहे, अभी भी काट रहे हैं प्रभुपाद ही काट रहे हैं। हम सब तो केवल माध्यम हैं, हम सब केवल यंत्र के समान हैं प्रभुपाद। इट अपीयर्स, लगता है ऐसा कि हम कर रहे हैं, प्रभुपाद ही कर रहे हैं अभी भी। अगर हम 10 दिन प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़े ना तो भूल जाएंगे क्या बोलना है, कलव नष्ट दृशा हमेशा भूल जाते हैं, आवाज नहीं निकलती मुंह से क्या बोला जाए। तो आज भी कौन काट रहा है, प्रभुपाद ही काट रहे हैं, आसान नहीं है इसको समझना। कलयुग में भगवत तत्व पे चर्चा करना आसान नहीं है। प्रभुपाद के परपट में पढ़ रहा था तात्पर्य, तो मैं देख रहा था कि प्रभुपाद एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं, क्योंकि एक ही बात को हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए प्रभुपाद की किताब पढ़ने से बार बार वो याद आता है। क्योंकि मेमोरी पावर बहुत कम है कलयुग में, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, भूल जाते हैं। और जैसे ही भूलेंगे कृष्ण को तो क्या होगा, माया झपटी आधारित, तुरंत माया पकड़ लेती है पदार्थ से। इसलिए जो है ये जो ज्ञान है ये गुरु के माध्यम से हमें प्रयास करना चाहिए जानने का। तो ये जो राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, या इनको सहस्त्रबाहु भी बोलते हैं ना, सहस्त्रबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, सोच सकते नर्मदा नदी को अपनी भुजाओं से रोक दिया, आप सोच सकते हैं कितना पावर होगा उनके अंदर। ये जो व्यक्तित्व है यार छोटे मोटे व्यक्तित्व तो नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, कितना पावर होगा हम सोच भी नहीं सकते इनके अंदर, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे पावरफुल पावरफुल व्यक्ति प्रकट होते हैं इसी इस ब्रह्मांड में, प्रकट होते हैं अलग अलग युगों में, अलग अलग क्षमता होती है लोगों की। यानी कि हम कलयुग में तो बताया गया है कि कलयुग के एंड आते आते लोगों की साइज मैक्सिमम जो साइज होगी 3 फीट होगी, जो सबसे लंबू होगा लंबू वो 3 फीट का होगा, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में, बाकी पुराणों में 3 फीट का व्यक्ति अगर होगा तो उसको लंबू बोलेंगे, और मैक्सिमम जो एज है जो सबसे बड़ा व्यक्ति उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आएगा अगर 50 साल का होगा कोई, तो ऐसा होने वाला है फ्यूचर। तो ऐसा क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में लोगों की उम्र बदलती रहती है, शारीरिक क्षमता बदलती रहती है, मानसिक क्षमता बदलती है, बौद्धिक क्षमता बदलती है, संभव है जैसे साधारण एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आज से 500 वर्ष पहले एक मशीन पर बैठकर आकाश में उड़ना असंभव था, है कि नहीं? कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मशीन पर बैठ के कोई उड़ेगा, लेकिन आज वो क्या हो गया? संभव हो गया। तो आज से 500 वर्ष पहले जो चीज असंभव था आज के लिए क्या हो गया? संभव हो गया। तो आज जो चीज असंभव है, हो सकता है कि आज से 5000 वर्ष बाद फिर वो संभव हो जाए। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद बोलते थे इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स एंड रैश्स, मूर्खों की डिक्शनरी में असंभव शब्द होता है, भगवान की डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। कुछ भी संभव हो सकता है, भगवान की शक्तियां इतनी हैं। तो इसलिए जो शास्त्रों में जो घटनाओं का वर्णन है, हजार बाहें, इतनी सोचना चाहिए ये असंभव है। इतने शक्तिशाली थे, राजा हुआ करते थे, आज भी हैं, आज भी हैं। जैसे परशुराम भगवान आज भी हैं। प्रभु जी दिखाइए कहाँ हैं? हमने दूरबीन से देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, कहीं परशुराम जी दिखाई नहीं दे परतु लेकर, नहीं, हमें नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि देखने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। कलयुग के जीवों को दर्शन करने की योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप के कारण जो है, पाप कर्मों के कारण हमारी दृष्टि जो है नष्ट हो चुकी है, वो फैसिलिटी हमें दिया नहीं गया है। देखने के लिए भी उतना ही हम देख सकते हैं जितना कि हमें फैसिलिटी दिया गया है भगवान के द्वारा, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। भगवान जितना अलाउ किए उतना ही हम देख सकते हैं। रिसर्च करने के लिए भी, वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए भी हम डिपेंड है भगवान के ऊपर। भगवान जितनी आंख दिए हैं उतना ही दृष्टि देख सकती है, एक्सरे को हम नहीं देख सकते हैं। मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन है। उसी तरह से कलयुग में नष्ट हो गई दृष्टि, इसलिए हम नहीं देख सकते। इसलिए अगर सत्य को देखना है तो शास्त्र की आंखों से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, गुरु और शास्त्र। इसलिए श्री प्रभुपाद ने शास्त्र लिखे हैं, हमें ज्ञान दिया है, उसको समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उसके आधार पे भक्ति करने का। सिद्धांत बोलिया ना करो आलस, सिद्धांत को पढ़ने में हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से हमारा जो बुद्धि है वो स्पष्ट रहेगा कि जीव का लक्ष्य क्या है, नहीं तो भ्रमित हो सकते हैं, वैज्ञानिकों की बातों से भ्रमित हो सकते हैं। अभी अभी रिसर्च हुआ है रिसेंटली कि बिग बैंग हो गया, वो गॉड पार्टिकल मिल गया है, अभी अभी रिसर्च किया है नया, और मद्रास में एक मंदिर बन गया है, मद्रास में भी नया नया एक मंदिर बनाया है, गॉड पार्टिकल टेम्पल। उसमें मंदिर में विग्रह जो है वो गॉड पार्टिकल है। धीरे धीरे ऐसे वैज्ञानिक प्रोपेगेंडा करेंगे, अगर हम नहीं जानते तो हम भ्रमित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है विश्वास को बनाए रखना। ये जो अविश्वास का जो माहौल चल रहा है कलयुग में, इसमें विश्वास को बनाए रखना बड़ा कठिन है। और विश्वास भक्ति का आधार है, अगर वो हिल गया तो एक्सटर्नली बाहर से केवल फॉलो करने से ज़्यादा हम एडवांस में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शास्त्रों का जो अध्ययन, साधु संघ है और सीनियर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज का संघ, क्योंकि वो देख पाते हैं सत्य को, वो इन आंखों से नहीं देखते, उनको हृदय में रियलाइजेशन है। प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में गए थे तो उनको कोई हिला नहीं सका, पूरा विश्व जो बोल रहा था हाँ हम चंद्रमा पे पहुंच गए। यहां तक प्रभुपाद का जो एक शिष्य था, पुरुषोत्तम नाम था उसका, प्रभुपाद ने दिया था नाम पुरुषोत्तम, तो वो मसाज कर रहा था प्रभुपाद को, और सामने टीवी पे चल रहा था कि वो पहुंच गए, प्रभुपाद देखिए पहुंच गया, अब आपका क्या क्या कहना है बताइए। प्रभुपाद भाई ये तो गलत है, ये सब नहीं पहुंच जाएगी, ये सब लग रहा है कहीं पे शूटिंग चल रहा है। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये तो सामने हो रहा है फिर भी बोल रहे हैं शूटिंग चल रहा है, ये कैसे आदमी है, बिल्कुल पुराने ख्यालों वाले। तो अगले दिन जब प्रसाद पाने का टाइम हुआ तो डिस्कशन चल रहा था कि सब लोग है ना, हम लोग सब भक्ति करने के बाद कहाँ जाएंगे, तो सब बोले प्रभुपाद हम लोग तो भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, गोलोक जाएंगे। तो बोले हाँ हम सब गोलोक जाएंगे और पुरुषोत्तम जो है वो चंद्रमा पे जाएगा। पुरुषोत्तम भाग गया अगले दिन, निकल के चला गया छोड़ के प्रभुपाद को। तो कम मत आकी है, माया को कम नहीं आंकना है। माया इज नॉट सो चीप, वेरी पावरफुल। हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए कई ऐसे जाल बना बुनती है माया। इसलिए अगर हम रेगुलर साधु संघ ऐसे भक्तों से श्रवण करें जो काट सकते हैं एक क्षण में सारे माया के अंधकार को दूर कर सकते हैं, वो वैसे भक्तों के द्वारा श्रवण करने से ही हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत क्लास या जो प्रभुपाद की किताब है इसको पढ़ना, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए, अगर हम भक्ति में स्वस्थ हेल्दी रहना चाहते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? टाइम हो गया है, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। तुरंत राज भागवतम की श्री राधा गिरिधारी की श्री गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ बोले सुधरा मैया की, प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।